मेरे बहुत बहुत प्यारे दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 23 मई 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का दो दिन के गैप के बाद बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और इसी के साथ ही दोस्तों, मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 11 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं प्रभात कुमार, आप मेरठ से हैं, सूरज सिंह सेंगर, आप भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, विकास डोडियार रतलाम मध्य प्रदेश से हैं, महावीर प्रसाद नाथ रतनगढ़ राजस्थान से हैं, राजेश प्रसाद औरंगाबाद बिहार से हैं, रुचिता सुदेव शास्त्री मुंबई से हैं, देवदास साध बीकानेर राजस्थान से हैं, शिवानी रघुवंशी आप विदिशा मध्य प्रदेश से हैं, सौरभ कुमार सैनी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं, अभय नारायण राय गया बिहार से हैं और विकास कुमार सिंह वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं। तो प्रभात, सूरज, विकास, महावीर, राजेश, रुचिता, देवदास, शिवानी, सौरभ, अभय और विकास, आप सभी 11 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, बीच बीच में जैसा कि मैं अक्सर याद दिला दिया करता हूं, आज फिर से याद दिला रहा हूं, स्पेशली अपने उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन कर दिया है बिना साइन किए ही एडमिशन लेकर, और उस लेटर को साइन करने के बाद मुझे लगता है कि आप लोगों का भी कर्तव्य है, एकेडमी का तो कर्तव्य है ही, कि हम दोनों मिलकर के हमने जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं उसका पूरी पूरी तरीके से पालन करें, और सच यह है कि इसे कर्तव्य न समझ करके अपना धर्म ही समझें। तो मित्रों, एकेडमी अपनी तरफ से लगातार तैयारी में लगी रहती है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि प्लीज, जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं वो कम से कम डेली ऑडियो को सुनना बिल्कुल भी मिस न करें। हालांकि मेरी यह अपील अपने उन सभी प्रिय श्रोताओं के लिए है से है जो किसी भी तरह से अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं या किसी भी तरह की सफलता अर्जित करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि यदि वो किसी नौकरी में भी हैं तब भी शायद यह डेली ऑडियो उनके आगे बढ़ने में उनके लिए मददगार सिद्ध हो सके। तो मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस नए सप्ताह की शुरुआत पर एक नई सूचना देने जा रहा हूं, और इस सूचना को सुनने के बाद थोड़ा आपको हो सकता है कि अच्छा लगे, बेहतर आप महसूस करें, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स शायद अंदर से खिल उठें जो बहुत लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे लेकिन मैं उसे पूरा नहीं कर पा रहा था। तो अभी तक जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा था उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और सूचना मित्रों यह है कि लगातार मैं देखता था कि शायद ही मेरा कोई दिन ऐसा नागा जाता हो जिस दिन के ईमेल में मुझे स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट न मिलती हो कि सर प्लीज हिंदू अखबार के क्लिपिंग्स भी आप डालें, प्रोवाइड करें। तो आप समझ ही गए होंगे मित्रों कि मेरी सूचना किस बात से संबंधित है, और सूचना इस बात से संबंधित है कि आज से आपको हिंदू अखबारों के भी क्लिपिंग्स अवेलेबल होने लगेंगे। हां, ये जरूर है कि वो एक दिन बाद का हिंदू पेपर का क्लिपिंग होगा, इसलिए जैसे कि आप इंडियन एक्सप्रेस के देखते हैं वो आपको एक दिन पुरानी क्लिपिंग्स मिलती है क्योंकि वो भोपाल में अवेलेबल नहीं होते। और मित्रों, मैं जब तक खुद क्लिपिंग्स अखबार देख न लूं, क्लिपिंग्स को पढ़ न लूं, तब तक मैं उस क्लिपिंग्स को सेलेक्ट नहीं करता हूं, इसलिए आपको एक दिन देरी से वो क्लिपिंग्स मिलेंगे। लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो क्लिपिंग्स होते हैं वो एकदम उसी दिन की सूचना पर आधारित नहीं होते जैसे कि अखबार की खबरें होती हैं। जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, जो एडिटोरियल कमेंट्स भी होते हैं, वो हमेशा एक दो तीन यहां तक कि एक एक सप्ताह पहले तक की घटनाओं पर लिखे जाते हैं, इसलिए डेट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो मित्रों मुझे लगता है कि सुनकर आपको थोड़ा सा बेहतर लगा होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद स्टूडेंट्स के दिमाग में इस बात को बहुत जबरदस्त तरीके से भर दिया गया है या उनके दिमाग में आ गई है कि जब तक वो हिंदू अखबार नहीं पढ़ेंगे तब तक शायद उनका सिलेक्शन नहीं होगा, या वो सिलेक्शन हो या न हो लेकिन वो आत्मविश्वास शायद उतना न जुटा पाए। मित्रों लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू अखबार नहीं पढ़ना ही बेहतर था, वो अखबार बहुत अच्छे अखबारों में से एक है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मेरी अपनी कुछ सीमाएं थी और सच पूछे सीमाओं से भी ज्यादा, सीमाओं को तो मैं तोड़ सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि चूंकि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया और आपको इंडियन एक्सप्रेस की क्लिपिंग्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूं तो हिंदू की जरूरत मैं नहीं समझता था, लेकिन चूंकि लगातार आप लोगों की मांग आती चली जा रही है तो अब उसकी क्लिपिंग्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ ही मैं एक बात आप लोगों को और बता दूं कि अभी तक लगातार मेरे पास ये मेल आते चले जा रहे हैं कि आप इंग्लिश पेपर्स की हिंदी अनुवाद प्रोवाइड करिए, हिंदी अनुवाद प्रोवाइड करिए। मित्रों मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि जितनी क्लिपिंग्स दी जाती हैं उनके हिंदी अनुवाद प्रोवाइड करना बिल्कुल भी संभव नहीं है, इसलिए आप लोग मुझसे इस बात की बिल्कुल भी अपेक्षा प्लीज न करें, इस अपनी असमर्थता के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। हाँ हमने एक काम जरूर किया है, अगर आप करेंट कंटेंट देख रहे होंगे तो करेंट कंटेंट में हम इंग्लिश के अखबारों का ही कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे अंग्रेजी के अखबारों के, चाहे वो आर्टिकल्स फॉर्म में आए हों चाहे वो एडिटोरियल फॉर्म्स में आए हों, तो उन्हें हिंदी के रूप में प्रोवाइड किया जाता है हिंदी भाषा के माध्यम से, लेकिन अनुवाद के रूप में प्रोवाइड नहीं किया जाता, उसको इस तरीके से आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है कि परीक्षा में आप उससे फायदा उठा सके। तो इसलिए प्लीज अब लगभग इस डिमांड को आप लोग, मैं समझता हूं कि बेहतर होगा यदि बंद कर दें कि अंग्रेजी के अखबारों के भी हिंदी में अनुवाद उपलब्ध कराए जाएं, वह संभव नहीं है और सच पूछिए तो मुझे लगता है वो जरूरी भी नहीं है, क्योंकि अब हम महत्वपूर्ण जो सबसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल कमेंट है आर्टिकल्स हैं उसको करेंट कंटेंट में प्रोवाइड कर ही रहे हैं, और अंग्रेजी के जो बहुत से आर्टिकल्स होते हैं उसी टॉपिक पर हिंदी में भी आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, और ये मत समझिए कि उनका स्तर अंग्रेजी के स्तर से कोई बहुत कमजोर होता है, मैं जो आर्टिकल्स प्रोवाइड करता हूं वो कमोवेश स्तरीय आर्टिकल ही होते हैं, अदरवाइज आप सोच करके देखिए कि 8 अखबारों से मैं अगर आपको थोड़े से भी सामान्य स्तर के आर्टिकल प्रोवाइड करने लगूं तो एक दिन में कितनी प्रेस क्लिपिंग्स हो जाएंगे, लेकिन वो बहुत ही सिलेक्टेड प्रेस क्लिपिंग्स आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो मित्रों इस सूचना के बाद अब हम लोग चलिए आते हैं लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से पर, 5-7 मिनट उसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। मित्रों आज हम लोग अभी इससे पहले सिविल सर्विस के जो भी रिजल्ट्स आए हैं उसकी एनालिसिस कर रहे थे, और मेरे एनालिसिस करने का जो डायरेक्शन था वो दोस्तों दो डायरेक्शंस थे। पहले तो ये कि सिविल सर्विस के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, और दूसरा उसका जो एक डायरेक्शन था कह लीजिए वो डायरेक्शन यह भी था कि बेसिकली सिविल सर्विस है क्या, ताकि आप इन दोनों चीजों को समझ सकें। तो जो रिजल्ट्स आए उनको आधार बनाकर मैं कुछ इसी तरह की बातें आप लोगों से कर रहा था, और मित्रों अब सिविल सर्विस के रिजल्ट को आधार बनाकर कर किए जाने वाले एनालिसिस का ये आज आखिरी दिन है एज फार एज लाइफ मैनेजमेंट के सेक्शन में इसकी डिस्कशन की बात है, जहां वहां तक आगे कुछ और नई चीजें मिलती रहेंगी तो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अब मैं नहीं समझ रहा हूं कि रिजल्ट को बेस बनाकर के कुछ बहुत ज्यादा बातें करने को रह गई है। वैसे तो चाहे आप एक मार्कशीट रोज लीजिए और उसकी रोज एनालिसिस कर दीजिए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, हमारे पास बातें करने के लिए बहुत बहुत हैं, कम नहीं है। तो आज अंतिम रूप से मैं इस बारे में कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, या कह लीजिए कि अभी तक जो बातें की गई हैं उसको समअप करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मित्रों मेरे थर्ड बैच के स्टूडेंट रहे हैं वरुण पांडे, इलाहाबाद के स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे टीना डाबी जी का एक ऑडियो भेजा था, किसी स्टूडेंट्स के ग्रुप में वो इंटरेक्ट कर रही थी, उसमें उन्होंने एक बात कही, मैं बातें उन्होंने बहुत कही, लगभग 10 मिनट की वो बातचीत है, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि आप तैयारी करते समय अंडरग्राउंड हो जाइए, है ना, मतलब आप अपने को पूरी तरीके से सभी चीज जगह से काट करके और अपने को पूरी तरह से पढ़ाई में डुबो दीजिए। उनकी जो नानी है या जो भी यहां रिलेटिव्स भोपाल में रहते हैं, उनका भी यहां के अखबारों में एक स्टेटमेंट छपा था, और वो ये था कि वो जब टीना यहां किसी शादी में या छुट्टियों में या और किसी प्रोग्राम्स में भी आती हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वो ज्यादातर समय पढ़ने में ही लगी रहती हैं। तो बट नेचुरल है कि चूंकि टीना जी का वो एक उनकी एक हैबिट है, उनको पढ़ने में बहुत आनंद आता है, वही उनके लिए मनोरंजन हो सकता है, और वो बहुत मेहनती हैं, वो उनकी जरूरत भी होगी, क्योंकि 22 ईयर्स की एज में टॉप करना आसान बात तो नहीं है। तो वो टीना जी की बात थी, और फिर चूंकि उसने उनको रिजल्ट प्रोवाइड किया, उन्होंने जो मेहनत की वो मेहनत रंग लाई, तो इसीलिए टीना जी जो कहेंगी वो बिल्कुल सच ही होगा। मतलब उसमें कोई आशंका करने की कोई बात है ही नहीं। लेकिन मित्रों, यहां जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि वो जो सच है, जो पूरी तरह सच है और व्यावहारिक सच है, याद रखिए कि वो टीना जी का अपना सच है, वो सार्वभौमिक सच नहीं है, वो सार्वजनिक सच नहीं है। इसमें जो सच निकल करके आ रहा है कि अंडरग्राउंड हो जाइए या हर समय पढ़ने में लगे रहिए, उसमें जो सच निकल कर आ रहा है वो सच ये है कि मजाक में मत लीजिए, ये जो सिविल सर्विस की तैयारी है ये मेहनत की मांग करती है, बस इतना ही सच है। लेकिन मेहनत की जो डेफिनेशन होगी वो अंडरग्राउंड हो जाने की या सब कुछ छोड़ छाड़ करके सिर्फ इसी काम में लग जाने की, वो टीना जी की अपनी डेफिनेशन है। याद रखिए कि आपको अपनी डेफिनेशन खुद तलाश करनी पड़ेगी, आपको अपनी डेफिनेशन खुद बनानी पड़ेगी, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आप इस सच को इग्नोर मत कीजिए। आप किसी भी स्टूडेंट से मिलिए जो सेलेक्ट हो गए हैं, तो कुछ कॉमन चीजें हर स्टूडेंट आपसे शेयर करेगा, क्योंकि वो चीजें जरूरी है। पेशेंस रखिए, मेहनत कीजिए, चीजों को याद करने की बजाय समझने की कोशिश कीजिए, एनालिटिकल पावर डेवलप कीजिए, ये सारी बातें वो कहेंगे, और मेहनत की बात तो आएगी। देखिए, कहीं भी चले जाइए, हमारे माता पिता टीचर से लेकर के पड़ोसी तक, जो भी जानने वाले लोग हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, मेहनत की बात तो हर कोई कहता है, और केवल सिविल सर्विस की तैयारी के लिए नहीं। आप छोटी सी दुकान खोल लीजिए, उसमें भी लोग कहेंगे कि बेटे बहुत मेहनत लगती है। खेती कर लीजिए, उसमें बहुत मेहनत लगती है। आप नौकरी कर रहे हैं तो ये कहेंगे कि बेटे मेहनत से करना। तो मेहनत तो एक ऐसी चीज है जो किसी भी सफलता की फाउंडेशन ही होती है, और ये बात अलग है कि उस चीज की कितनी मेहनत है। अगर मैं खेती कर रहा हूं तो उसमें क्या मेहनत लगेगी, अगर मैं व्यापार कर रहा हूं तो उसमें क्या मेहनत लगेगी, अगर मैं इंडस्ट्री में हूं तो क्या मेहनत लगेगी, मैं सेल्समैन हूं तो मेरी क्या मेहनत होगी, है ना। सेल्समैनशिप में कितनी जबरदस्त मेहनत होती है, मैं एग्जीक्यूटिव हूं तो मेरी क्या मेहनत होगी। तो मेहनत की डेफिनेशन अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, और यहां तक कि अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से भी अलग अलग होती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में इंडिविजुअल होता है, वो अपने आप में एक यूनिक पीस है। आप हैं, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, मैं यहां जनरल कॉमन प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के एक कॉमन बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपकी पृष्ठभूमि को नहीं जानता कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, फैमिली बैकग्राउंड से लेकर के एजुकेशनल बैकग्राउंड तक, आपकी एज कितनी है, आप कितने टैलेंटेड हैं, आपकी मेमोरी पावर कितनी है, आपकी दूसरी कंडीशंस क्या हैं, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप कितने घंटे दे सकेंगे, अगर आप टोटली फ्री हैं तब आप कितने घंटे दे सकेंगे। तो आप ये बताइए कि जब तक मैं आपके बारे में इतनी सारी चीजों में से कुछ भी नहीं जान रहा हूं, तब तक मैं आपके लिए प्लान कैसे बता सकता हूं, कैसे बना सकता हूं। और सच पूछे तो अगर मैं जान भी जाऊं तब भी मुझे आपके लिए प्लान नहीं बनाना चाहिए। एक कॉमन चीज मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि आप अपने आप को जितने अच्छे से और ईमानदारी से समझेंगे, दूसरा कोई कैसे समझ सकता है। तो मित्रों, इस बात की उपेक्षा आप मत कीजिए, अनुकरण मत कीजिए, अंधाधुंध अनुकरण मत कीजिए। दूसरे ने टॉर्च जला दी है, रोशनी दिखाई दे रही है, और उस रोशनी में फिर आप अपना रास्ता खुद तलाश कीजिए। आप देखिए, अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो अपना रास्ता बनाइए, क्योंकि वह आपके लिए ज्यादा व्यावहारिक होगा। व्यावहारिक ही नहीं होगा बल्कि आपकी सफलता को वो ज्यादा सुनिश्चित भी कर सकेगा। इसलिए मित्रों, जो कॉमन जो बातें होती हैं वो हर स्टूडेंट पर लागू होती हैं, वो तो आपको लेकर चलना ही है। लेकिन जहां तक प्लान की बात है, मुझसे पूछते हैं कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या लूं, फिर पूछते हैं कि मैं मैथ्स लेना चाह रहा हूं कि लूं कि नहीं, मैं हिस्ट्री लेना चाह रहा हूं मैं लूं कि नहीं लूं। अरे मैं कैसे बता सकता हूं दोस्तों कि आप लें या ना लें। मैं तो ये बता सकता हूं कि हिस्ट्री में भी सिलेक्ट हो रहे हैं, ज्योग्राफी में भी सिलेक्ट हो रहे हैं, मैथ्स में भी सिलेक्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि हिस्ट्री में भी सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, ज्योग्राफी में भी सिलेक्ट नहीं हो रहे, मैथ्स में भी सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। अगर सब्जेक्ट में इतना दम होता तो या तो वो सबको सिलेक्ट करा देता, या सब्जेक्ट ही अगर कमजोर होता तो सबको फेल कर देता। आप लिस्ट टॉपर्स की उठा करके देखे, शुरू से लेकर के और आखिरी 10 लोगों के, पता लगा सबके सब्जेक्ट अलग अलग है। आपके टॉपर टीना डाबी, उनका पॉलिटिकल साइंस है, तो पता लगा कि पिछले बार की जो टॉपर है उनकी ज्योग्राफी थी, उससे पहले के जो टॉपर थे गौरव अग्रवाल उनकी इकोनॉमिक्स थी। तो तीन सब्जेक्ट तो मैंने बता दिए और तीनों सब्जेक्ट ले लेकर के इन सबने टॉप किए हैं। तो टीना डाबी जी ने तो ऐसा नहीं किया कि भैया चूंकि गौरव अग्रवाल का इकोनॉमिक्स था तो मुझे भी इकोनॉमिक्स लेना चाहिए, या चूंकि ईरा सिंघल जी का जो ज्योग्राफी था तो मुझे ज्योग्राफी लेना चाहिए। उन्होंने जो उनको सूट किया, जो उनको ठीक लगा, उस सब्जेक्ट को लिया, उस सब्जेक्ट में को तैयार किया और वो भी टॉप कर गई। तो मित्रों, इन चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाइए, है ना। चीजों को आप अपने कमांड में लीजिए, अपने कमांड से चीजों को एकदम मत छोड़ दीजिए। जहां आपकी अपनी कमजोरी लग रही है, उन कमजोरियों के लिए दूसरों की मदद लेकर के और उनसे मुक्ति पाइए। लेकिन कुछ डिसीजंस तो आप खुद भी लेना सीखिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप बनने जा रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर बनने का मतलब ही है डिसीजन लेने वाला, जो दूसरों के लिए हुए डिसीजन के अनुसार काम करता है, फॉलोअर्स होता है, वो सबॉर्डिनेट होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता। तो मित्रों, इस लाइफ मैनेजमेंट के आज के इस हिस्से के बाद अब सिविल सर्विस के रिजल्ट्स पर जो आधारित हम लाइफ मैनेजमेंट में डिस्कस कर रहे थे, उसको अब मैं समाप्त करना चाहूंगा। हाँ, आप लोग अपने प्रश्न भेजिए, अपनी जरूरतें बताइए, तो उसको मैं उनके जवाब में बिल्कुल दूंगा। अब हम लोग लाइफ मैनेजमेंट का जो पुराना वाला हमारा जो पैटर्न था, अब उसी पैटर्न पर हम लोग बातें करेंगे। तो आप लोगों से मैं फिर से अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि अब आप लोग लाइफ मैनेजमेंट वाले उस तरह के सब्जेक्ट्स और उस तरह के अपने जरूरतों के बारे में मुझे सुझाएं, ताकि मैं उनकी चर्चा लाइफ मैनेजमेंट में कर सकूं। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं AIR न्यूज पर। इससे पहले कि मैं AIR न्यूज पर चर्चा करूं, मैं एक बात के लिए आप लोगों से माफी चाहूंगा, दो बातों के लिए। एक पहली बात तो यह कि मैंने फ्राइडे को जो उससे पिछले सप्ताह में जो मैंने क्वेश्चन दिया था, वीकली क्वेश्चन, उसकी चर्चा मैंने नहीं की। मित्रों, मुझे ध्यान में था कि मुझे उस पर चर्चा करनी है, लेकिन मैं चर्चा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि आप देख रहे थे कि टाइम लगातार बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि वो जो बैंकरप्सी जो कोर्ट था वो लगातार छूटता चला जा रहा था और मुझे अंदर से बड़ा अपराध बोध सा लग रहा था कि देखिए, मैं बार बार अपने स्टूडेंट को इंश्योर कर रहा हूं कि मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन बता नहीं पा रहा हूं। तो मैंने सोचा था कि अब इसको बता ही दिया जाना चाहिए, तो टाइम बढ़ गया। तो पहले तो यह है कि मैं इस बात के लिए माफी चाहूंगा कि मैं फ्राइडे को अपना वो वायदा नहीं निभा पाया, और इस बात के लिए भी माफी चाहूंगा कि मैंने अपने समय की मर्यादा का उल्लंघन किया, क्योंकि जनरली मेरी कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से इसे 30 से 35 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दिया जाए इस ऑडियो को, लेकिन मैं समझता हूं कि उस फ्राइडे का जो ऑडियो था शायद वो 40 मिनट के आसपास पहुंच गया था, तो मैंने अपने समय के जो मर्यादा का उल्लंघन किया, उसके लिए भी मैं माफी चाहूंगा। तो मित्रों, मेरी कोशिश होगी कि समय जो मेरे पास बचेगा, तो ये जो निबंध की जो बात थी, जो पिछले फ्राइडे को मैंने आप सैटरडे को जो क्वेश्चन लिखने के लिए दिया था, उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा आज कर सकूं। तो सबसे पहले मैं आता हूं AIR न्यूज पर। दोस्तों, कल के AIR न्यूज में डेफिनेटली दो तीन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। पहली खबर तो आप लोगों ने सुनी ही, और वो इंपॉर्टेंट खबर है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ईरान की यात्रा पर पहुंच गए हैं और अब वो पहुंच चुके हैं। चैनल्स वगैरह में आपने देखा होगा कि वो ईरान की यात्रा पर पहुंच चुके हो। मित्रों, अब मुझे ये लगता है, और क्यों लगता है मैं आपको ये भी बताऊंगा, ताकि आपकी कैपेसिटी बिल्डअप हो सके, कि भारत के प्रधानमंत्री की जो ईरान यात्रा है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है दो दृष्टि से। नंबर एक, पहली तो यह कि यह प्रधानमंत्री की यात्रा, याद रखिए कि जब प्रधानमंत्री हमारे हेड हैं, सरकार के मुख्य हैं, और प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं वो यात्रा बहुत मायने रखती है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की विदेश यात्राएं बहुत मायने रखती है, लेकिन अगर इन दोनों में से हम माने कि कौन सी यात्रा प्रमुख है, तो डेफिनेटली फिर प्रधानमंत्री की यात्रा ज्यादा मायने रखती है, वो ज्यादा वजन रखती है, राइट। दूसरी बात यह है कि ईरान हमारे लिए फिर क्यों मायने रखता है, अब आप इसका निर्धारण कैसे करेंगे? ईरान हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और ईरान के बारे में आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है, एक सामान्य जो समझ है, न्यूज में सुन लिया, अखबारों में चर्चा हो रही है, उसको उसके आधार पर आपको कोई एक जवाब देना है, तो आप क्या जवाब देंगे? कोई कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा ईरान और भारत के संबंधों को लेकर, कुछ तो होगा, आपको सोचना चाहिए। यहां ये प्रैक्टिस है, क्योंकि जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने दिमाग को इस सांचे में नहीं ढालेंगे, तब तक सबसे दुविधा यह होगी कि फिर एग्जामिनेशन हॉल में कैसे चीजें आपके दिमाग में आएंगी। तो जहां तक मुझे लगता है कि एक बात तो, एक उत्तर तो आप में से हर कोई दे सकता है, और वो ये है कि ईरान में तेल के भंडार है और भारत को तेल बहुत ज्यादा आयात करना पड़ता है, तो ईरान इस मायने में भारत के लिए बहुत महत्व रखता है। एक उत्तर तो मुझे लगता है कि ये उत्तर आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल आ ही चुका होगा। दूसरा उत्तर भी है, दूसरा उत्तर यह है, हो सकता है कि यह भी आपके दिमाग में आ गया हो कि आप मालूम है कि जो ईरान है वो मुस्लिम बहुल एरिया है, वो पूरा का पूरा एरिया ही ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और फिर उधर सीरिया, यमन, वो आप पूरा देखते हैं, चलते चले जाएंगे तो पूरा का पूरा इस्लाम देश है। इस पूरे के पूरे एरिया में आप देख रहे हैं कि कैसे सीरिया का युद्ध चल रहा है, यमन का संघर्ष चल रहा है, और सऊदी अरब और इराक के अभी के संकट पैदा हुए, तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। जो आईएसआईएस है उसका दबदबा इसी क्षेत्र में है, तालिबान अपना अपने तरीके से काम कर रहे हैं, तो एक तरह से जो आतंकवाद है, जिसको हम एक विश्व आतंकवाद का नाम देते हैं, उसकी ज्यादातर गतिविधियां उसके अड्डे इन्हीं क्षेत्रों में हैं। और आपको मालूम है कि भारत आतंकवाद से दुष्प्रभावित होने वाले देशों में से एक प्रमुख देश है, है ना? तो ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री ईरान जा रहे हैं तो एक स्वाभाविक सी बात है कि ये जो इस्लामिक आतंकवाद नहीं कहना चाहिए, सच पूछे तो विश्व आतंकवादी कहें, तो ये जो आतंकवाद है, विश्व आतंकवाद है, इसमें ईरान काफी कुछ भारत का सहायक हो सकता है, तो उस पर बात होगी ही। और वैसे भी मुझे लगता है कि अगर आप थोड़े भी लंबे समय से इस डेली ऑडियो को सुन रहे हैं तो एक धारणा आपके दिमाग में बन चुकी होगी कि जब भी हमारे प्रधानमंत्री विश्व के किसी भी देश में जाते हैं या प्रमुख विश्व के प्रमुख देशों के जब कोई भी हेड्स हमारे यहां आते हैं तो विश्व आतंकवाद पर भारत जरूर बात करता है, क्योंकि भारत न केवल इससे सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित ही है बल्कि भारत विश्व शांति का भी सबसे प्रबल पक्षधर भी, हम विश्व शांति की बात करते हैं और यह हमारे फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा भी है, और पंचशील का जो हमारा दर्शन है, विदेश नीति का जो दर्शन है, वो इसी पर आधारित भी है, विश्व शांति। तो जब आतंकवाद होगा तो शांति संभव ही नहीं है, यह दूसरा प्रश्न भी आपके दिमाग में आ सकता है। अब एक जो तीसरा प्रश्न जो आपको आएगा वो तब आएगा जब आपने एक अलग पैटर्न पर तैयारी की हो, और सच पूछिए तो ये जो तीसरा प्रश्न आएगा, मान लीजिए कि पांच लड़के स्टूडेंट्स इसी प्रश्न के उत्तर लिख रहे हैं, उनमें से चार स्टूडेंट ने तो ये दो पॉइंट दे दिए, लेकिन एक जो पांचवा जो स्टूडेंट है वो एक और पॉइंट ऐड करता है, और वो जो पॉइंट ऐड कर रहा है वो उसे किसी किताब में मिला नहीं है, वो उसके प्रिपरेशन के पैटर्न के कारण उसके दिमाग में आ गया है। अब प्रिपरेशन का पैटर्न क्या हो सकता है? प्रिपरेशन का पैटर्न इसमें यह है फ्रेंड्स कि वो जो पांचवां स्टूडेंट है वो करता यह था कि जब भी कुछ इस तरह की विजिट्स होती थी या इंपॉर्टेंट बातें आती थी तो वो एटलस उठाता था या नक्शा देखता था। तो जब उसने ईरान को नक्शे में देखा तो उसने पाया कि भारत से अगर वेस्ट की तरफ हम चलें तो सबसे पहले आएगा पाकिस्तान, सबसे पहले हमारी जो मुलाकात होगी, हम जो एंटर करेंगे वो पाकिस्तान में करेंगे, और फिर मजेदार बात यह है अगर पाकिस्तान से स्ट्रेट नीचे की तरफ नॉर्थ पाकिस्तान में अगर हम घुसे तो पाकिस्तान को पार करते ही हम ईरान पहुंच जाएंगे। ये बात अलग है कि अगर हम पाकिस्तान के साउथ से एंटर करें या मिडिल से एंटर करें तब हम पाकिस्तान के बाद हम ईरान नहीं पहुंचेंगे, हम अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर हम नॉर्थ साइड से अगर हम जाएंगे तो नॉर्थ साइड से जाने में या मिडिल में जाने में पाकिस्तान, हम सिक्वेंस से चलते हैं, भारत से चलेंगे, फिर हम पाकिस्तान में एंटर करेंगे, फिर हम अफगानिस्तान पहुंचेंगे और तब जाकर के हम ईरान पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के साउथ से एंटर करें तो हम भारत से चलेंगे, साउथ पाकिस्तान में एंटर करेंगे और इसके बाद सीधे हम ईरान में एंटर कर जाएंगे, जो ईरान का साउथ होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत और ईरान के बीच में जो एक देश है वो सिर्फ पाकिस्तान है। तो क्या आप नहीं कह सकते कि वो हमारा काफी कुछ एक पड़ोसी देश है? कह सकते हैं ना आप। तो अब आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पड़ोसी देश की इंपॉर्टेंस क्या होगी, ऑलमोस्ट पड़ोसी देश हो गया, उसका कितना महत्व होगा, और खासकर जब हम एक आतंकवाद जैसे मुद्दे पर बात कर रहे हो। नंबर एक। नंबर दो, जो ईरान है वो शिया बहुल इलाका है, वहां शिया मुस्लिम ज्यादा है। शिया मुस्लिम कंपेरेटिवली मॉडरेट माने जाते हैं, मॉडरेट होते हैं। उस रूप में भी जो ईरान है वो भारत के लिए ज्यादा मददगार साबित हो सकता है, भारत से ज्यादा उसके अच्छे संबंध हो सकते हैं। फिर अगर आपने तेल की बात कही, मान लीजिए आपके दिमाग में पॉइंट आया था कि हम तेल बहुत मंगाते हैं ईरान से, तो अब आप देखें कि सच में अगर वो हमारे इतना नजदीक है ईरान, तो अगर पाइपलाइन सीधे सीधे बिछ जाए तो सीधे सीधे तेल हमारे पास पहुंच जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट का चक्कर ही नहीं रहेगा, क्योंकि ईरान तब आपको लगेगा कि हमसे बहुत दूर नहीं है। आप नक्शे में देखेंगे तो पाएंगे कि अरे तब तो बहुत दूर नहीं है। तो हम इस तरीके से भी एक आगे चलकर के भविष्य के लिए एक व्यवस्था कर सकते हैं। फिर आप जब केवल नक्शा देखने के बाद अब ढेर सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने लगेंगे कि ठीक है, यहां जो गठबंधन बन रहा है उस गठबंधन में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान धीरे धीरे चीन की तरफ झुकता जा रहा है, चीन इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका भारत के साथ जुड़ गया है, ये बहुत अच्छी बात है। फिर आपने ये भी न्यूज सुनी होगी कि अभी अभी ईरान पर से कुछ समय पहले जो प्रतिबंध लगाए गए थे, जो अमेरिका और यूरोपीय देशों ने लगाए थे, वो प्रतिबंध हटा लिए गए, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, क्योंकि ईरान ने इंश्योर किया है कि वो परमाणु हथियार वगैरह नहीं बनाएगा। तो अब ईरान पर से जो प्रतिबंध हट गए हैं तो भारत के लिए भी बहुत अच्छा मौका मिला है कि वो ईरान से अपने संबंध अच्छे करके एक तो आयल को पेट्रोलियम पदार्थ इंश्योर कर ले, और फिर इस मौके का वो फायदा भी उठाए, क्योंकि अमेरिका अभी भारत के बहुत करीब चल रहा है और ईरान पर से प्रतिबंध हटाने के कारण ईरान और अमेरिका के संबंध भी पहले की तुलना में बेहतर हो गए हैं। तो भारत के साथ जो अमेरिका के संबंध हैं उनका फायदा उठाते हुए वो ईरान के ज्यादा क्लोज आ जाए, तो इधर से जो बैलेंस होता है जो पाकिस्तान चीन के नजदीक चलता चला जा रहा है, ऐसे में ईरान की दोस्ती भारत के लिए बैलेंस ऑफ पावर में मददगार हो सकता है। दोस्तों मैंने जानबूझ करके जल्दी जल्दी बोला है, जल्दी जल्दी जानबूझ करके बोला है, मत सोचिएगा, इसलिए मैं बोला है कि किस तरीके से एक प्रिपरेशन करने का एक छोटा सा अलग तरीका आपके दिमाग को कितने सारे इनपुट प्रोवाइड कर देता है, और ये कहीं ना कहीं थोड़े से ओरिजिनल किस्म के इनपुट होते हैं जो आप अपनी तरफ से लिखते हैं। ये बातें आपको तभी सूझेंगी जबकि आपके दिमाग में कुछ इंप्रेशंस तो हों। तो मित्रों, यहां मैंने ईरान प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के आपसे थोड़ी सी चर्चा की है, और मुझे यकीन है कि इस चर्चा ने आपको ज्यादा भ्रमित नहीं किया होगा और कुछ न कुछ प्रिपरेशन करने की एक दृष्टि दी होगी। दोस्तों, जो दूसरी खबर थी वो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के अंतर्गत दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, वो मैं आपसे आज शेयर करना चाहूंगा। सिविल सर्विस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। पहला, उन्होंने ध्यान दिलाया है जल संरक्षण के प्रति। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में कैसे पानी को लेकर के, पीने के पानी को लेकर के एक हाहाकार मचा हुआ है, सूखा भी पड़ा हुआ है, जानवरों की दुर्गति हो रही है, खेती बाड़ी की तो दुर्गति हो ही रही है, तो अभी वो एक माहौल बना हुआ है, तो स्वाभाविक है कि वो जल संरक्षण की बात उन्होंने की है। तो भारत में जो जल की समस्या है, इसके बारे में मैं इससे पहले आपको कुछ क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर चुका हूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें प्रधानमंत्री जी को कुछ न कुछ मतलब वो बोलेंगे ही आगे पीछे चलकर, तो मैंने उस पर आर्टिकल भी आपको प्रोवाइड किया है, और आपके जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि करेंट कंटेंट के अंतर्गत भी जल संरक्षण के ऊपर आपको मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों, आप इसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मान सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मान सकते हैं, और इसमें जो वाटर कंजर्वेशन है इसमें आपको भारत की संरचना को देखते हुए जो स्मॉल वाटर बॉडीज हैं उस पर आपका स्ट्रेस होना चाहिए, जो छोटे छोटे जल संरक्षण के कुंड बन जाएं, तालाब बन जाएं, कुएं बन जाएं, छोटे छोटे गड्ढे बन जाएं, इस पर ज्यादा जोर देना चाहिए, बजाय इसके कि हम बड़े बड़े डैम के चक्करों में पड़े, है ना, वो पता नहीं कब बनेंगे, क्योंकि जब बड़े डैम लेते हैं तो उसमें फिर पब्लिक का सहयोग काम नहीं आता है, है ना, तो वो तो एक तरह से कैपिटल बेस्ड पूंजी ओरिएंटेड काम हो जाता है। लेकिन इन छोटे छोटे जो जल संरक्षण के जो हैं, तालाब बना दिए गए, छोटे छोटे चेक डैम बना दिए गए, इनमें पब्लिक का कोऑपरेशन काम आता है, ये काम पंचायतें करवा सकती हैं, इन काम को मनरेगा के थ्रू रूप दिया जा सकता है और बहुत जगहों पर इस तरह के काम हो रहे हैं। तो ये आपका मतलब मेन पॉइंट होगा जल संरक्षण के मामले में। इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, केसलेस सोसाइटी की बात उन्होंने कही है। केसलेस सोसाइटी के मतलब हम अपने लेन देन के सिस्टम में मतलब पैसे को किनारे कर देंगे और केवल बैंक अकाउंट के जरिए ही हमारा लेन देन होता रहेगा। तो पहली बात तो उन्होंने यही कही कि उसमें पारदर्शिता आ जाएगी। उन्होंने पारदर्शिता का मतलब यह कि फिर ब्लैक मनी की संभावना बहुत कम होती चली जाएगी, पारदर्शिता का यही मतलब है, क्योंकि आप सब अपने कार्ड से या अकाउंट के थ्रू लेन देन कर रहे हैं तो सारा अकाउंटेड मनी है, नोन मनी है। जो उन्होंने कैशलेस सोसाइटी की बात कही, देखिए कैशलेस सोसाइटी के उन्होंने तीन आधार दिए हैं। इसी तरह से आपको केवल अपनी प्रायोरिटीज पकड़नी पड़ती है कि मान लीजिए कैशलेस सोसाइटी पर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारत में कैशलेस सोसाइटी की स्थापना की संभावनाओं पर विचार कीजिए, कितनी संभावना है, तब आपको सबसे पहले तो ढांचा बताना पड़ेगा कि भाई कैशलेस सोसाइटी के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ प्रधानमंत्री जी ने हमारे इंडिकेट कर दिया है। पहली उन्होंने बात कही आधार कार्ड, आपके पास एक आइडेंटिटी है। दूसरी बात उन्होंने कही जनधन योजना के तहत लगभग हर परिवार के अपने खाते खुल चुके हैं, क्योंकि बैंक का तो आपको सहारा चाहिए, वो भी हो चुका है। और तीसरा, मोबाइल में तो आप जान ही रहे हैं कि हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है कि मोबाइल हमारे पास सबके पास है, तो वो भी आपके कैशलेस ट्रांसफर में, आपकी मनी ट्रांसफर में आपकी काफी मदद कर सकता है। फिर आप देख रहे हैं कि इधर पेमेंट बैंक वगैरह भी खोलने की बात हो रही है। तो ये तीन जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से हम अपने सोसाइटी को कैशलेस सोसाइटी बना सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट था। एक और क्वेश्चन जो है वो जनधन योजना को लेकर के है फ्रेंड्स, की जो जनधन योजना है वो न्यूज में आपने सुना कि अगस्त 2014 में ये योजना शुरू की गई थी और अभी आते आते अगस्त तक इसके 2 साल पूरे हो जाएंगे और दिसंबर में हमारे मेंस एग्जामिनेशन होंगे इस बार के। तो यानी कि 2 साल पूरे होने के बाद उम्मीद की जाती है कि किसी योजना का मूल्यांकन इवेल्युएशन किया जा सके। तो हो सकता है कि जनधन योजना के मूल्यांकन पर प्रश्न दिसंबर में होने वाले मेन एग्जामिनेशन में पूछ ही लिया जाए। तो ये एक, क्योंकि उसमें आपने देखा कि स्पेशली हाईलाइट किया गया है कि जो पुदुचेरी है वहां लगभग 100% लोगों के जनधन योजना के तहत खाते खुल चुके हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को क्या फायदा हो रहा है, करप्शन को रोकने में कितनी मदद मिली है, लोगों में बचत की कितनी प्रवृत्ति हुई है, कितना अमाउंट लगभग बैंकों के पास आ चुका है, ये कुछ ऐसे कंटेंट होंगे जिनका सहारा लेकर आप इस योजना को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो मित्रों, ये AIR न्यूज की बात थी और मैं अब माफी चाहूंगा कि फिर से मैं आज निबंध की चर्चा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं, आप आश्वस्त करता हूं कि मैं इस पर चर्चा करूंगा, हो सकता है कि कल इस पर हम लोग बात करें। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति बहुत बहुत आभार और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्हीं दोस्तों में से कुछ के नाम हैं, कर्णपाल सिंह बीकानेर राजस्थान से, स्वाति गुप्ता झालवाड़ राजस्थान से, प्रीति बांसोड़ दुर्ग छत्तीसगढ़ से, विजय चौहान शिमला हिमाचल प्रदेश से, अभिषेक पांडे इलाहाबाद से, चंदन पासवान अपर्णा कुमारी, देवांश त्रिपाठी इलाहाबाद से, वीके मिश्रा प्रतापगढ़ से, रितु रानी नवादा बिहार से, हिटलर शर्मा, अर्पित कौशिक लखनऊ से, दीपक महतो, शिव विवेक, मनीष, नवीन सिंह सरायपाली छत्तीसगढ़ से, पवन कुमार ब्रह्मपुर बिहार से, अभिनव लखनऊ से, शाश्वत अग्रवाल वाराणसी से, गोपाल कुमार सिंह हावड़ा से और सपना पांडे सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मैं आपसे प्रेस क्लिपिंग्स के बारे में बात करना भूल गया। मैं आज आपको 2 प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, एक तो ईरान और भारत के संबंधों को लेकर के है और दूसरे हिंदू की एक प्रेस क्लिपिंग्स है, वो आप लोग नॉलेज सेंटर पर जाकर देख लेंगे। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब आज का यह डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।